नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी की प्रार्थना ये श्रीमद् भागवत में हम सब भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रार्थनाओं से हम सीख सकते हैं कि कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व क्या है और हमें कैसे भगवान का गुणगान करना चाहिए और उनके ऊपर निर्भर रह के अपना जीवन बिताना चाहिए। तो इस 37वें श्लोक में कुंती महारानी इसी बात की चर्चा करेंगे। तो आइए हम ये श्लोक साथ में पढ़ते हैं। अपि आप्याद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वेत् सुहृदोऽनुजीविनः येषां चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम् आप्याद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वेत् सुहृदोऽनुजीविनः येषां चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्। अनुवाद शील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, अपने आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अनुवाद दोहराइएगा। हे प्रभु, आपने ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। उनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वो हम सब तक भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों का ज्ञान पहुंचा दें या वो अपने भक्ति या प्रेम को इन वचनों के माध्यम से व्यक्त करें, परंतु वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के नहीं जाए। अभी श्री कृष्ण प्रस्थान करने की तैयारी में थे, वो कई महीने पांडवों के साथ रहे और विशेष करके अर्जुन के साथ रहे, और अब समय आ गया था उनको वापस द्वारका जाना था, क्योंकि वहां पर भी उनके भक्त यदुकुल के सदस्य उनकी राह देख रहे थे। तो ये भक्त और भगवान के बीच में एक प्रेम का संबंध होता है, जिससे न तो भक्त भगवान को छोड़ना चाहता है और न भगवान भक्त को। जब कहीं भी प्रेम होता है तो कोई भी संग को छोड़ना नहीं चाहता। जब प्रेम नहीं होता है तो हम जल्दी से जल्दी संग छोड़ना चाहते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों की बात हम समय समय पर इतिहास में देखते हैं कि जब भी भगवान उनके संग को छोड़ने का नाम लेते थे तो बहुत विचलित हो जाते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में संन्यास लेने के पश्चात आए तो उन्होंने ये ठीक समझा कि मुझे तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करना चाहिए, तो दक्षिण भारत की यात्रा में होकर आए और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। तो भक्तों ने सोचा कि ठीक है, अब महाप्रभु वृंदावन जाएंगे तो न जाने कितने महीने लगेंगे, कब वो लौटेंगे, क्योंकि उन दिनों में तो हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी ये सब तो थी नहीं, तो उनको पैदल जाना पड़ता। और सोचिए कि पुरी से वृंदावन चल के जाना काफी समय लगता। तो भक्त सोच रहे थे कि इतने महीने जब महाप्रभु यहां से जाएंगे तो यहां हमारे लिए उनका विरह, उनसे दूर होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो जब महाप्रभु ने चाहा कि वृंदावन जाएं, हालांकि वो सबसे स्वतंत्र स्वराट भगवान हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, एक दृष्टि से देखा जाए तो सभी उन्हीं पर आश्रित हैं, फिर भी प्रेम की वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे भक्तों की अनुमति लेनी चाहिए। भक्तों और भगवान का संबंध ऐसा ही है, प्रेम में ऐसे होता है कि दोनों ही भगवान और भक्त एक दूसरे के ऊपर अपने आप को आश्रित समझते हैं और अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। भगवान भी अपनी स्वतंत्रता भक्तों के हवाले कर देते हैं, जिस प्रकार से भक्त अपनी स्वतंत्रता भगवान के हवाले कर देता है। तो महाप्रभु ने सोचा कि मुझे पूछना चाहिए भक्तों को कि क्या मैं वृंदावन जा सकता हूं, मेरी इच्छा है। तो भक्तों ने कहा कि वो कोई ना कोई बहाना बनाना चाहते थे महाप्रभु को यहां पुरी में रखने के लिए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी देखिए डोल यात्रा आने वाली है, तो डोल यात्रा के बाद जाइए ना, उत्सव मना के जाइए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है। डोल यात्रा आई तो चलो अभी डोल यात्रा हो गया, अब मुझे वृंदावन जाने की इच्छा, मुझे अनुमति दीजिए। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी नरसिंह चतुर्दशी अभी भी आ रहा है, नरसिंह चतुर्दशी मना के फिर आप जाइए। ठीक है, नरसिंह चतुर्दशी मना लिया, फिर भक्तों के सामने आए कि चलो अब वृंदावन जाने का समय आ गया है तो मैं जाना चाहता हूं, अनुमति है। अरे अभी क्या जल्दी है, अभी अभी तो रथ यात्रा आने वाला है पुरी में, तो यह रथ यात्रा तो बड़ा उत्सव मना के जाइए, आपके संग के बिना हम रथ यात्रा कैसे करेंगे। और रथ यात्रा आई तो जन्माष्टमी, जन्माष्टमी आई तो अगला उत्सव, ऐसा करते करते काफी समय उन्होंने बिता डाला। और श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि भक्तों की अनुमति के बिना मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, जब तक ये मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मुझे भेजेंगे नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये प्रेम का संबंध है, भक्त छोड़ना नहीं चाहते हैं भगवान को। उसी प्रकार से जब श्री रामचंद्र अयोध्या छोड़ने की तैयारी में थे वनवास में जाने के लिए, तो सारे अयोध्या के निवासी उनके पीछे आए और उनसे कहने लगे कि आप मत जाइए। कई लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप यहां से जाइए मत। यहां तक कि उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने भी बहुत उनसे अनुरोध किया, परंतु श्री रामचंद्र ने कहा, मेरा धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये मुझसे पाप होगा। मुझे सत्यकामी होना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य का आश्रय नहीं लेता है तो उसकी दुर्गति होती है। तो आप अगर मुझे जाने से रोकेंगे तो ये आप अधर्म का काम करेंगे। वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि ये कोई अधर्म नहीं है। तो कई लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। अंततः जो अयोध्या के निवासी थे उन्होंने कहा, ठीक है, हम समझते हैं कि आप सत्यपरायण हैं और आपको आपके पिताजी का वचन निभाना है और आप जाना चाहते हैं वन में, तो हम आपके साथ आएंगे। इसमें तो कोई बंधन नहीं है, आपका वचन है कि आप यहां से चले जाएंगे, लेकिन हम भी आपके पीछे आएंगे। सारे अयोध्या नगरी खाली हो जाएगी और कैकेयी और भरत को अकेले खाली राज्य में राज करने दो और केवल यहां पशु रहेंगे और इंसान कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे मनुष्य जो है वो आपके पीछे पीछे आएंगे जंगल में। तो जंगल में अयोध्या बन जाएगा और अयोध्या जंगल बन जाएगा। तो ये जंगल का राज करने दो भरत को और कैकेयी को, लेकिन हम आपके पीछे आएंगे। फिर किसी न किसी तरह से श्री रामचंद्र ने उनको समझाया और रात में जब वो सब सोए हुए थे तो चुपके से वो वहां से निकल पड़े एक स्थान में जहां की वो नदी के तट पर रुके हुए थे। तो भक्त इतने आसक्त होते हैं भगवान से, भगवान का एक संग जो है वो एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब अगले दिन सुबह को भक्तों ने देखा कि श्री रामचंद्र चले गए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ और फिर बहुत भारी हृदय लेकर वो अपने अपने घरों में वापस आए और सभी लोग दशरथ महाराज और कैकेयी को कोसते कोसते वापस गए। और इधर वृंदावन में भी हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने वाले थे, अक्रूर जी उनको लेने के लिए आए, तब भी वृंदावन के निवासी और विशेष करके गोपियां उनके रथ के सामने आईं और रथ के सामने खड़े होकर कहने लगी कि नहीं, हम आपके रथ को आगे जाने नहीं देंगे, आपको यही रहना होगा, आप मथुरा चले जाओगे, वो तो बड़ी नगरी है, बड़ी नगरी के लोगों के बीच में रहकर आपको वहां आकर्षण हो जाएगा, हम लोग तो साधारण गांव के निवासी हैं, हम लोग केवल यहाँ पे दूध दोहन करते हैं गाय से, हम गाय चराते हैं और फिर हम मक्खन दही बनाते हैं, यही हमारा काम है, लेकिन वहां मथुरा में आपको बहुत बड़े बड़े आदमी मिल जाएंगे नगरी में, तो आप वहां से आकर्षित होगे और फिर वहां वापस आओगे ही नहीं वृंदावन में, फिर हमारा क्या होगा। तो वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो श्री कृष्ण ने किसी न किसी तरह से उनको समझाया और आश्वासन दिलाया कि अवश्य मैं लौटूंगा, शीघ्र ही लौटूंगा। हां, भगवान ने अपना वचन पूरा नहीं किया जल्दी, ये दूसरी बात है, लेकिन बाद में एक बार आए थे भगवान दंतवक्र का की हत्या करने के बाद। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में इतना घनिष्ठ प्रेम का संबंध होता है कि जब भी भगवान दूसरे जगह जाने का नाम लेते हैं तो भक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको पीछे रखने का प्रयास करते हैं। पहली बात युधिष्ठिर महाराज ने उनको निवेदन किया था रुकने के लिए, फिर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के ऊपर हमला हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो उत्तरा दौड़ती हुई आई और कृष्ण ने रक्षा किया परीक्षित का। और फिर कुंती महारानी अब कोई ना कोई कारण ढूंढ रही हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण को रोका जाए। और ये केवल एक कारण या बहाना नहीं है, जो वो इस श्लोक में बोल रही हैं वो सत्य है। वो अब बोल रही हैं कि अब तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो, जबकि आपने अपने कर्तव्य स्वयं निभा लिए हैं, लेकिन फिर यहां हमारा क्या होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? हम तो पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित हैं, निर्भर हैं, और आपके बिना हमारा कोई रक्षक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अवतार जब लेते हैं तो बिना कारण यहां पर नहीं आते हैं भौतिक जगत में, उनका कोई उद्देश्य होता है, और इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति वो करते हैं और फिर स्वधाम लौट के चले जाते हैं। तो यहां पर कुंती महारानी कह रही हैं कि आपके कई उद्देश्य हैं और स्वयं आपने इन उद्देश्यों की पूर्ति कर ली है, लेकिन अभी आप यूं ही छोड़ के जा रहे हो। किनको छोड़ के जा रहे हो? हम सबको, जो आपके ऊपर निर्भर हैं, अनुजीविनः सुहृदम, जो आपके सत्यनिष्ठ मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, आपके भक्त हैं, ऐसे लोगों को आप छोड़ के जा रहे हो, निराश्रित अवस्था में छोड़ के जा रहे हो। कुंती महारानी भलीभांति जानती थी कि उनके 5 लड़के कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया था, जो कि साधारण दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो असंभव था। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, भौतिक दृष्टि, पांडवों का जीत होना यह संभव नहीं था। कौरवों की सेना में जो सैनिक थे वो संख्या कहीं ज्यादा थे पांडवों की सेना की तुलना में, और कौरवों की सेना में बड़े बड़े सेनापति थे जैसे भीष्म, द्रोण, कृपा आदि, और उनके सामने पांडवों के बड़े बड़े सेनापति कुछ भी नहीं थे। लेकिन एक ही कारण था कि पांडव विजयी हुए, और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति। यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थ धनु, यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मम। तो आखिर में अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं भगवद गीता में कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां पर उनके भक्त धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां पे हर तरह का ऐश्वर्य होगा, वहां पे नीति होगी, वहां पे विजय होगा, वहां पे कभी भी पराजय नहीं हो सकता है। तो कुंती महारानी ये जानती थी कि उनकी जीत हो चुकी है, ये बड़े बड़े सेनापति खत्म हो चुके हैं, और उनके पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। फिर भी वो कह रही हैं कि हम अपने आप की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि जो भी हम हमारी अपनी रक्षा कर पाए हैं आज तक, वो केवल आपने रक्षा दिया है इसीलिए हो पाया है, अन्यथा ये संभव नहीं था। अभी देखिए, अगर कुंती महारानी ऐसी सोच रही हैं तो हमें कैसे सोचना होगा? हम तो पांडवों जितने योग्य नहीं हैं, उतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं है, हम कोई बड़े राजा या राजकुमार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुंती महारानी सोचती हैं कि हम समर्थ नहीं हैं अपनी रक्षा करने में। तो हम कैसे समझे अपने आप को समर्थ? अपने आप हम समर्थ अपने आप को नहीं समझें तो किसके ऊपर निर्भर रहे? कुंती महारानी कहती हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना है, ऐसा नहीं कि हम हमारे धन के ऊपर निर्भर रहें, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, हमारे वकीलों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे तालाओं के ऊपर निर्भर रहें हमारी रक्षा के लिए, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ताले का प्रयोग नहीं करना चाहिए या हमें अपने पैसे को सुरक्षित अवस्था में नहीं रखना चाहिए, परंतु जानना चाहिए कि अंततः रक्षा जो है ये केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो कुंती महारानी का जो भाव है ये अन्य पांडवों का भी भाव है। सब भगवान के नित्य पार्षद हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। जब अर्जुन एक बार द्वारका में गए थे ये युद्ध के बाद, जब कृष्ण यहां इस स्थान को छोड़कर वापस चले गए थे द्वारका में, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के काफी बाद में, और श्री कृष्ण ने ठान लिया था कि अब मुझे स्वधाम लौट के जाना है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मेरा जो परिवार है यदुकुल, इसके सदस्यों को कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अगर मैं यहां नहीं रहूं, अगर मैं अकेले स्वधाम लौट के गया तो यहां पर ये तो बड़ा उत्पात कर देंगे, क्योंकि मेरे संरक्षण में रहकर ये लोग इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि कोई उनको रोक नहीं सकता। जैसे हम जानते हैं कि एक दो साल पहले जब सुनामी हुआ तो सुनामी वो ऐसा बाढ़ है पानी का जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे सदस्य हैं, मेरे भक्त हैं, ये इतने शक्तिशाली हो गए हैं मेरी कृपा से, और इनके अंदर थोड़ा सा घमंड भी हो गया कि हम श्री कृष्ण के निज जन हैं और वो इस प्रकार से सारे पृथ्वी पर विचलित होकर घूमेंगे मेरे विरह में और सब जगह उपद्रव मच जाएगा, इसलिए उनको भी मुझे वापस भेजना होगा मेरे जाने से पहले। तो उन्होंने योजना की और यदुकुल को भी उनके आपस में झगड़ा कराकर उनको वापस भेज दिया अपने अपने स्थान में, अपने धाम में, और फिर श्री कृष्ण ने तैयारी की स्वधाम जाने के लिए, गोलोक वृंदावन लौट के जाने के लिए। उधर उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरी जो रानियां हैं उनको आप साथ में सुरक्षित अवस्था में ले जाओ, जितने भी सारे राजकुमार हैं और राजा हैं वो सब प्रभास क्षेत्र गए हुए हैं कोई यज्ञ वगैरह करने के लिए। तो अर्जुन लेकर गए और अर्जुन ने देखा कि वो उन रानियों की रक्षा नहीं कर पाए, थोड़े डाकू आए वहां पर, उन्होंने हमला किया और अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर पाए और अर्जुन को बहुत दुख हुआ। और जब आखिर में अर्जुन लौट के आए तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अरे अर्जुन बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या कारण है? तो फिर अर्जुन ने उनको कहा कि श्री कृष्ण स्वधाम लौट के गए हैं, वही श्री कृष्ण जिनकी वजह से हमने इतना कुछ यहां पर किया था, जिनकी वजह से हमें उस युद्ध में जीत हुई, जिनकी वजह से हमें यह साम्राज्य प्राप्त हुआ, जिनकी वजह से हम इतने कठिनाइयों से दूर निकल आए, अब जबकि वो कृष्ण चले गए हैं हमारी शक्ति भी सब निकल गई। ये वही गांडीव बाण है जिसको मैंने युद्ध में प्रयोग किया था, जिससे कि बड़े बड़े सेनापतियों की हत्या कराई थी मैंने, बाण भी वही हैं और मेरे हाथ भी वही हैं और मैं भी वही हूं, मेरा रथ भी वही है, लेकिन फिर भी आज मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, मैं उन डाकुओं का भी सामना नहीं कर पाया। कहां बड़े बड़े सेनापति थे युद्ध भूमि में और कहां ये साधारण चोर डाकू, मैं इनका सामना नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरी सारी शक्ति छीन ली। भगवान अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं भगवान के कार्य को ही संपन्न करने के लिए, और जब भगवान का कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर वो उस शक्ति का कोई काम नहीं रहता, आवश्यकता नहीं रहती उस शक्ति की, तो फिर या तो भक्त को वापस बुला लेते हैं अपने पास या भक्त से वो शक्ति निकाल देते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस काम के लिए उन्होंने वो शक्ति दी थी भक्त को वो काम पूरा हो गया है। तो भगवान ने अपना काम पूरा कर दिया था, विनाशाय च दुष्कृताम, सारे दुष्ट लोगों का विनाश हो गया था। परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों की भी रक्षा कर ली थी उन्होंने। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवत गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को दे दिया था। सब काम हो गया तो भगवान को रहने की कोई आवश्यकता नहीं अभी। तो फिर अर्जुन कहने लगे कि अब मेरे अंदर कोई शक्ति रही नहीं, हालांकि मैं वही हूं, मेरी भुजाएं भी वही हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि हालांकि पांडव इतने शक्तिशाली थे, लेकिन वो अपने आप की भी रक्षा केवल इसलिए कर पाए कि श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर थी, और पांडव पूरी तरह से श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर थे, आश्रित थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पांडवों का अहो सौभाग्य था कि उनका भाव ये था कि हम पूरी तरह से श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये आधुनिक काल की बीमारी है कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, बच्चे माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। पश्चिम देशों में हम देखते हैं कि जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, लड़की हो या लड़का, वो घर से निकल जाते हैं, किराए पे अपना घर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर छोटी मोटी कोई नौकरी भी करके अपना गुजारा कर लेते हैं। वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। और आजकल धीरे 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 ये भारत में भी आ रहा है, पत्नी भी पति के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, महिलाएं भी आजकल स्वतंत्र होना चाहती हैं, और पुरुष भी ऐसे भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, धर्म के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति आजकल स्वतंत्र होने की इच्छा रखता है, लेकिन आजकल लोग ये नहीं जानते कि ये संभव नहीं है। प्रकृति के कड़े नियम हमें स्वतंत्र होने नहीं देंगे, हमें हमेशा बद्ध अवस्था में रखेंगे। तेपीश तंत्र्याम उरुदाम्नि बद्धा, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये कड़े नियम जो है वो रस्सी के बराबर है जो सारे बद्ध जीवों को बांध के रखते हैं इस भौतिक जगत में। केवल अज्ञानवश आदमी समझता है कि मैं स्वतंत्र हो सकता हूं, और ये स्वतंत्र होने का जो प्रयास है उसको हम प्रगति कहते हैं। ये प्रगति नहीं है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि भगवान के ऊपर आश्रित रहने के बजाय हम स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र रहना ये तो संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास करें तो उनकी माया शक्ति है जो कि हमको पकड़ के रखेगी। अगर कोई देश का नागरिक सरकार के कानून से स्वतंत्र काम करने का प्रयास करे कि मुझे सरकार से क्या लेना देना, सरकार के कानून से मुझे क्या लेना देना, मेरे मन में जो आए सो मैं करूंगा, फिर क्या होगा उसको? उसकी स्वतंत्रता सरकार छीन लेगी और अपने गेस्ट हाउस में उनको थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। कौन सा है वो गेस्ट हाउस, अतिथि आश्रम कौन सा है? जेल है। तो जब हम भगवान के आश्रय को छोड़ते हैं या उसका पालन, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता भगवान के जो दूत होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, वो छीन लेते हैं। जितनी भी हमारी स्वतंत्रता है वो भी खत्म हो जाती है। कम से कम अगर हम अच्छे नागरिक बन के रहे हैं, सरकार के कानून का पालन करके रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमारी स्वतंत्रता है। हालांकि ये सही है कि लाल बत्ती है तो हमें गाड़ी रोकना ही होगा, तो थोड़ा बहुत तो स्वतंत्रता के ऊपर बंधन है, लेकिन फिर भी काफी स्वतंत्र हैं हम, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बात में हमने कहा कि नहीं लाल क्यों, लाल मतलब आगे जाओ, चलो आगे चलो, और ऐसे बार बार हम करते रहे, तो आखिर सरकार कहेगी कि नहीं तुमको जेल में जाना होगा, फिर जो भी बहुत स्वतंत्रता थी वो भी चले जाएगी। इस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्य को चाहिए कि वो बिल्कुल भगवान के ऊपर आश्रित रहे। और अगर कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहता है और केवल अपने बुद्धि, विज्ञान, बल, धन आदि का आश्रय लेके कानून को तोड़ना चाहता है तो वो रावण के बराबर है। और रावण की क्या दशा हुई आपको तो मालूम है। रावण भी चाहता था कि स्वर्ग लोक तक एक सीढ़ी बनाया जाए, सोने की सीढ़ी, असली साधारण सीढ़ी नहीं, यहां सीमेंट कॉन्क्रीट की सीढ़ी जिसके ऊपर मार टाइल वगैरह लगाते हैं, ऐसे हमारे यहां ऐसे नहीं, सीधे सॉलिड पक्के सोने की सीढ़ी सीधे स्वर्गलोक तक। वैसे स्वर्गलोक में जाना ये तो कोई छोटा काम नहीं है, बहुत ही पुण्यवान लोग ही जा सकते हैं। लेकिन रावण चाहता था कि ये किसने बनाया कानून, मुझे क्या लेना लेना है इस कानून से, मैं अपने कानून से चलूंगा, कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है, चलो पापी से पापी लोग चलो सब स्वर्ग में चलो, तो मैं तुम्हारे लिए सब सीढ़ी बना दूंगा। सब असुर लोगों को स्वर्ग में भराना चाहते थे। तो ये रावण की वृत्ति है जो भौतिक जगत में रह के झूठा स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन पांडव एक आदर्श है हमारे लिए, वो हम सबको दिखला रहे हैं कि कैसे हम भगवान के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, और साथ साथ ऐसा नहीं कि हम भगवान को कष्ट दें। कई ऐसे प्राणी होते हैं, जंतु, जीव जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणी के शरीर में निवास करते हैं, आश्रय लेते हैं दूसरे शरीर का, लेकिन अपने आप खुद नहीं कुछ नहीं करते, उस शरीर से खून चूसते हैं, है ना। ऐसे ऐसे जंतु होते हैं ना, हमारे गौशाला में भी एक बड़ी समस्या है, किसी भी गौशाला में कई बार ऐसे जंतु आते हैं जो गाय के शरीर के ऊपर आश्रय लेते हैं और खून चूसते चूसते रहते हैं। तो इस प्रकार से आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए भगवान का, कि भगवान के ऊपर निर्भर रहें और भगवान के बोले आप ही हमारे भोजन दिलाइए, हम क्यों बिजनेस करेंगे, हम क्यों व्यापार करेंगे, हम क्यों परिवार का भरण पोषण करेंगे, हम आश्रित हैं आपके ऊपर, तो आप ही हमारा व्यवसाय संभालिए, आप ही भोजन हमारे परिवार को दिलाइए। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पांडव इस प्रकार से निर्भर नहीं थे, अपने हृदय में निर्भर थे लेकिन भगवान को कोई कष्ट नहीं देना चाहते थे, वो भगवान के आदेश अनुसार पूरी तरह से सक्रिय थे, भगवान के लिए कोई कार्य करने में पीछे नहीं हटते थे, आलसी नहीं थे वो, भगवान के ऊपर आश्रित रहने के बहाने पर आलसी नहीं बनना चाहिए लोगों को। जब तक कि हम वास्तव में उस स्तर तक नहीं पहुंचे कि हमारी श्रद्धा भगवान के आश्रय में इतनी है कि वास्तव में हम निष्क्रिय भी रहें तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। जैसे माधवेंद्र पुरी, वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु, और ऐसे बताया जाता है कि माधवेंद्र पुरी वो तो सन्यासी थे, व्यापार की बात नौकरी की बात तो दूर है, वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, उनका आश्रम तो था नहीं कोई, वो तो परिव्राज का आचार्य थे, परमहंस परिव्राज का आचार्य, परिव्राज का आचार्य मतलब जो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, और कहीं एक जगह जाके किसी को वो मांगते नहीं थे। तो क्या रास्ता है अगर कोई अपनी नौकरी या व्यवसाय नहीं करता है, कोई भिक्षा नहीं मांगता है, किसी के घर में जाके पूछता नहीं कि मैं भूखा हूं मुझे थोड़ा भोजन दीजिए, तो इस आदमी का गुजारा भरण पोषण होगा कैसे। तो माधवेंद्रपुरी क्या करते थे, माधवेंद्रपुरी कभी भी किसी को पूछते नहीं थे भोजन के लिए, अगर कोई सामने से आके उनको भोजन या प्रसाद देता तो वो स्वीकार करते, अगर नहीं आता कोई उनके सामने भोजन लेकर तो वो समझते कि ये भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि मैं आज उपवास रखूं, और उपवास रखते थे, और उनकी उतनी श्रद्धा थी और उतनी उनके उनका दृढ़ विश्वास भी था, तपस्या की वृत्ति भी थी उनके अंदर, ऐसा नहीं कि एक बार भोजन किसी ने नहीं दिया तो पर बस सोच लिया चलो अभी अभी चाहे दूसरी बार पूछना पड़ेगा किसी को भोजन के लिए, नहीं, कई बार लगातार कई दिन भी वो भूखे रहते थे, निश्चिंत थे, कोई परवाह नहीं थी उनको। ठीक है, इसका मतलब है भगवान नहीं चाहते हैं कि हम खाएं। एक बार जब वो ब्रज में आए गोवर्धन के पास में, और वहां थके हुए थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे गोविंद कुंड के पास, और वो स्थान है जहां पर सारा जल जो कृष्ण के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया था वहां पर है। तो वहां पर बैठे थे, अपना नाम जप कर रहे थे, और अचानक एक सुंदर लड़का आया उनके पास कि बाबा जी, गोस्वामी जी, लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं और भूखे हैं, तो ये लीजिए, आपके लिए थोड़ा ताजा दूध है। तो माधवेंद्रपुरी को आश्चर्य हुआ कि मैं यहां एकांत स्थान में बैठा हूं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? तो बच्चे ने जवाब दिया कि यहां मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, यहां गांव की महिलाएं जो हैं वो यहां से गुजरकर जा रही थीं, उन्होंने आपको देखा और मुझे कहा कि ये हमारे गांव की प्रथा है कि कोई भूखा नहीं रहता, तो वो बाबा वहां पर है, बाबा जी उनको जाके ये दूध दे दो, दूध पिला दो, और ये आप पी लीजिए, और मैं थोड़ी देर में आता हूं कटोरी लेने के लिए। और उस बच्चे के सौंदर्य से माधवेंद्रपुरी बहुत ही आकर्षित हुए और पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम कौन हो? मैं यहां इस गांव में रहता हूं, मैं गायों को चराता हूं। लेकिन माधवेंद्रपुरी को पता नहीं चला कि ये कौन से गाय चराने वाला बच्चा है। तो दूध उन्होंने ले लिया और पीना शुरू किया। जब पिया तो ये बिल्कुल अमृत ही था, और थोड़ा सा पीकर ही उनको पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। और फिर रात में वही बच्चा उनके सपने में आया। माधवेंद्रपुरी चिंतित थे कि ये बच्चा उस कटोरी को वापस लेने के लिए आया नहीं है, तो रात देखते रहे कि कब आएगा ये बच्चा, कब आएगा, और आया नहीं। वैसे भी माधवेंद्रपुरी थके हुए थे, तो राह देखते देखते वो उनको थोड़ी नींद आ गई और बैठे बैठे ही वो सो गए। और उस समय सपने में वही बच्चा आया और अपने आप की पहचान करा दी, और वो हैं गोपाल, श्री कृष्ण स्वयं थे, और उन्होंने उनको आदेश दिया कि मेरी मूर्ति यहां पर झाड़ियों में है, जब मुसलमानों ने यहां आक्रमण किया तो यहां के पुजारी जो है उन्होंने मुझे यहां छुपा दिया था। अब कई साल हो गए, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में मुझे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा है, इसलिए मेरा शरीर अब बहुत गर्म हो गया है, अब मुझे बाहर निकालो और अभिषेक करके मेरे लिए एक सुंदर मंदिर बनाओ, मुझे मेरी स्थापना करना। तो माधवेंद्रपुरी ने ऐसे ही किया। कहने का मतलब ये है कि माधवेंद्रपुरी जैसे परमहंस भक्त जो होते हैं वो इस प्रकार से आश्रय लेते हैं भगवान के ऊपर, क्योंकि वास्तव में उनका स्तर ऐसा है। लेकिन हम माधवेंद्रपुरी की नकल नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम कहें कि भगवान हमको सब दिलाएंगे और फिर हम भगवान की सुरक्षा के ऊपर निर्भर रहेंगे। लेकिन एक बार जब भोजन नहीं आएगा, दूसरे बार नहीं आएगा, तो फिर हम जाएंगे ही जाएंगे कुछ करने के लिए, हम वो भूख सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें माधवेंद्रपुरी का नकल नहीं करना है, हमें सक्रिय रहना है। जैसे आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक शेर को भी सक्रिय रहना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। ऐसा नहीं है कि शेर सोचेगा या सिंह सोचेगा कि मैं जंगल का राजा हूं, केवल मुंह खोल के बैठूंगा और भोजन मेरे मुंह में आ जाएगा। उसे भी कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन पांडवों ने हमें दिखाया आदर्श कि भगवान के ऊपर कैसे पूरी तरह से निर्भर रहते हुए भगवान के आदेशानुसार सक्रिय रहना, भगवान की हर इच्छा को पूरा करने के लिए सतर्क रहना। बिल्कुल श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से भगवान के आश्रय को स्वीकार करते हैं उनको सनाथ कहते हैं, और जो भगवान के आश्रय को स्वीकार नहीं करते हैं उनको अनाथ कहते हैं। अनाथ समझते हैं ना, जो बच्चे कौन है, अनाथ, अनाथ बच्चे, लावारिस, जिनके कोई मां बाप नहीं है, ऐसे भटक रहे हैं रास्ते के ऊपर। कभी हम देखते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर इधर उधर बच्चे इधर उधर घूमते फिरते भटकते हुए रहते हैं, उनका कोई, उनको कोई पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं, अगर जिए तो जिए, खाने आज किसी न किसी तरह से अपना गुजारा कर लेते हैं, अनाथ होते हैं ये बच्चे। तो भगवान तो हमारे परम पिता हैं, अगर हमने अपने पिता को ही स्वीकार नहीं किया तो फिर हम अनाथ हो गए। और अनाथ की दशा कैसी होती है आप जानते हैं, आपने देखा है सब छोटे वो जो अनाथ होते हैं लावारिस बच्चे, उनकी क्या दशा है। लेकिन जो सनाथ है, जो अपने माता पिता के साथ में रहता है, उसको कोई परवाह नहीं है। क्यों? उसको पता है कि मेरे माता पिता मेरा देखभाल करेंगे, मुझे कपड़े देंगे, मुझे भोजन देंगे, कोई बीमारी हो गई तो इलाज कराएंगे, हर दृष्टि से मेरा देखभाल करेंगे, उसके मन में कोई तनाव नहीं है। तो इस दुनिया में जो लोग अभक्त हैं वो अनाथ हैं, और जो लोग भक्त हैं, श्रद्धालु भक्त, वो सनाथ हैं। और अगर कोई अनाथ है लेकिन भगवान का आश्रय लेना चाहता है तो भगवान बहुत ही आतुरता से उनको आश्रय देते हैं कि हाँ आओ आओ। भगवान तो इसीलिए अवतार लेते हैं ताकि जो अनाथ उनके बच्चे हैं वो उनके आश्रय में पुनः आ जाएं। कुंती महारानी और पांडव वो भगवान के विरह में, भगवान के विरह के अवस्था को सहन नहीं कर पाते। जैसे एक मछली पानी से बाहर निकाली गई तो कैसे तड़पती रहती है, उसी प्रकार से कुंती महारानी और पांडव जानते थे कि एक बार श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के जाएंगे तो हम ये विरह को सहन नहीं कर पाएंगे, ये विरह एक वज्र के समान होगा जिससे बहुत कष्ट होगा। क्योंकि पांडव पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित थे। तो प्रभुपाद हम सबको चेतावनी देते हैं कि हम सबको भी इसी तरह से भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए। ये बुद्धिमान अकलमंदी का काम है। कभी हमें इतना स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, अपने आप में इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को हमेशा सावधान रहना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि माया बहुत शक्तिशाली है, और अगर हम बार बार हर क्षण भगवान के संरक्षण के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान से, भगवान के ऊपर हर क्षण पूरी तरह से आश्रित नहीं रहेंगे तो माया झपट के हमको किसी भी क्षण पकड़ सकती है। माया पकड़ सकती है इसका मतलब है कि हम भगवान को भूल जाएंगे और फिर से संसार के कार्यों में हम लग जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं दूसरी बात जो भक्तों को करना चाहिए वो है अव्यर्थ कालत्वम, कि समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें सदैव भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए। हम देखते हैं कि दुनिया में लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं, इधर उधर बैठते हैं, गांव में भी शहर में भी, और आजकल सब जगह टीवी आ गया है तो समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल प्रथम श्रेणी का मार्ग है। सबसे अच्छा अगर समय आपको बर्बाद करना है तो टीवी खोल के बैठ जाइए, कैसे समय बीतेगा पता नहीं चलता है, एक घंटे दो घंटे आजकल लोग रात भर भी टीवी देखते बैठते हैं, तो कैसे भगवान का आश्रय लिया जाएगा। तो मनुष्य जीवन इतना अनमोल भेंट है भगवान का, और मनुष्य जीवन का हर एक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो मनुष्य जीवन में हम ऐसे अपने समय को व्यर्थ करें तो कितने दुर्भाग्य की बात है। नाम गाने सदा रुचि ही, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सदैव हमें भगवान के नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, पढ़ने चाहिए, गुणगान करना चाहिए, भगवान का उनकी सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार से हमारा जीवन बिताना चाहिए तो फिर भगवान हमें पूरी तरह से सुरक्षा देंगे। भगवान सबकी रक्षा करते हैं लेकिन विशेष करके अपने भक्तों की करते हैं। अगर कोई सोचे ठीक है, भगवान सबकी रक्षा कर रहा है ना, तो फिर हम क्यों भक्त बने? वैसे भी भगवान हमारी रक्षा करेगा। जो जेल में है कैदी, उनकी भी तो रक्षा सरकार कर रही है ना, उनको भी तो भोजन मिल रहा है ना, लेकिन क्या हम पसंद करेंगे वहां रहना? हम तो चाहते हैं बाहर रह के स्वतंत्र जीवन, आराम से आनंद से रहें, उठे बैठे जहां आना है आए, जाना है जाएं। और अगर भगवान अपने भक्तों के लिए ज्यादा श्रद्धा ऐसे रखते हैं तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे एक राजा है, राजा का कर्तव्य होता है कि सारे प्रजा की वो रक्षा करे, परंतु विशेष करके राजा के निकट जो उनके सेवक होते हैं, अगर वो उनको कोई तकलीफ होती है तो राजा विशेष उनकी रक्षा करते हैं, ये स्वाभाविक है। जैसे समझ लीजिए एक कारखाने का मालिक है, उसके कारखाने में 1000 कर्मचारी हैं, वो सबकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके घर में जो कर्मचारी है उसको कोई तकलीफ हो जाता है तो विशेष करके उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो खास उसका सेवक है। ठीक उसी प्रकार से हालांकि भगवान सभी की रक्षा करते हैं, परंतु विशेष करके वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से एक माता पिता होते हैं वो अपने सबसे छोटे बच्चे की सबसे ज्यादा रक्षा करते हैं, क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा निस्सहाय होता है, वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है और पूरी तरह से माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के ऊपर इतना निर्भर नहीं रहते, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो पूरी तरह से निर्भर रहता है माता पिता के ऊपर। तो हालांकि माता पिता सारे बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे छोटा बच्चा जो निस्सहाय है उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी रक्षा विशेष रूप से करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का आश्रय अपनी स्वेच्छा से लेते हैं, अपनी इच्छा से वो भगवान के आश्रय की याचना करते हैं, वो अपनी इच्छा से भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे मेरे पास आते हैं वैसे मैं उनको शरण देता हूं, वैसे मैं आदान प्रदान करता हूं। तो अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहते हैं तो भगवान कहेंगे ठीक है, मैं जबरदस्ती आश्रय दूंगा क्यों? लेकिन अगर कोई उनके पास आए और कृपा याचना करे कि मैं, मुझे आप सुरक्षित रखिए, मैं आपका भक्त हूं, आपके ऊपर निर्भर हूं, तो भगवान भक्त वत्सल है, कृपा के सिंधु हैं, इसलिए वो रक्षा देते हैं ऐसे भक्त को। इसलिए कृष्ण कर्णामृत, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा विरचित, उन्होंने ऐसे कई सुंदर श्लोक लिखे हैं। उनमें से एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय उच्चारण करते थे, जबकि उनको विरह की भावना उत्पन्न होती थी। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोकमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि। बिल्वा मंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे करुण एक सिंधो, केवल करुणा सिंधु नहीं, करुणा एक सिंधो, एकमात्र आप ही करुणा के सागर हैं, कृपा और कहीं से नहीं मिल सकती, केवल आप ही हैं जो कृपा दे सकते हैं। अनाथ बंधो, अनाथों के आप बंधु हैं, अनाथों को सनाथ बना सकते हैं आप, और जब मैं आपको देख नहीं सकता, हरे मतलब ओ हरि, हे हरि, त्वद मतलब आपको, आलोकनम देखना, अंतरेण बिना मतलब जब मैं आपको नहीं देखते हैं, अमून्य अधन्यानि दिनांतराणि, हमारे दिन और रात बहुत ही अशुभ हो जाते हैं, हा हंत हाय हाय, तो मेरे दिन ऐसे, मेरा समय कैसे बीतेगा। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण करते थे, उनको बहुत पसंद आया। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भगवान बहुत आतुरता से अनाथों की राह देख रहे हैं कि कब ये अनाथ बच्चा सनाथ बनने के लिए आएगा हमारे पास। अनाथ बनने में हमारा नुकसान है, सनाथ बनेंगे तो बहुत लाभ है, बहुत फायदा है। अब देखिए रास्ते के ऊपर भी प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, कितने कुत्ते हैं जो रात भर एक दूसरे को परेशान करते हैं, हमको भी परेशान करते हैं, हम सबको, है ना। दिन भर रात भर भौंकते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़े करते हैं, कभी इधर भोजन मिला तो मिला, नहीं तो उधर भागते रहना, कितने परेशानी का जीवन है। लेकिन वो अनाथ हैं कुत्ते, लेकिन एक कुत्ता है किसी अमीर आदमी के घर में पाला जा रहा है, उसको बढ़िया कॉलर वगैरह मिला है गले के ऊपर, और वो सोता है तो कहां, वो अपने मालिक के बिस्तर के ऊपर सोता है, रेशम का कवर है उसके ऊपर, और वो भी टीवी देखता है, टीवी देखने को उसको मिल जाता है, घर में जो पकता है उसको वो भी मिल जाता है, घर के जितने मालिक की जितने भी सुविधाएं हैं उसको मिल जाते हैं। और आजकल बेलगाम में ये सब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अन्य शहरों में हमें देखा है, भारत में भी ऐसे पशुओं के लिए ब्यूटी पार्लर हैं। यहां पे है क्या बेलगाम में? है, बंबई में हमने देखा है और दूसरे जगहों में भी है। तो आपके कुत्ते को, पालतू कुत्ते को, बिल्ली को आप ले जाकर शैंपू करा सकते हैं, उनका हेयर स्टाइल करा सकते हैं, तो उनको फैशनेबल बनाने के लिए भी व्यवस्था आजकल है। और लोग कितना पैसा देते हैं, आजकल यहां अपने बाल कटवाने कोई जाएगा तो कितना देना पड़ता है पता नहीं, 10-20 रुपए देने पड़ते होंगे, 20-25 रुपए कितने भी होंगे, लेकिन ये लोग जब जाते हैं तो कितना, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, किसके लिए, कुत्ते को शैंपू करने के लिए। तो केवल उसको थोड़ा अपने स्वतंत्रता को त्यागना है, ज्यादा नहीं, वैसे भी कुत्ता उसको लेकर जाएगा, कुत्ता उसका, कुत्ता जो है वो उसका मालिक बन जाता है, मालिक का मालिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक को उसको पीछे पीछे जाना पड़ता है, वो लगाम लेके जाता है, और कुत्ता जहां जाता है बेचारे मालिक को पीछे पीछे लगाम लेकर जाना पड़ता है ना। तो कौन कौन पालतू है और कौन मालिक है ये समझ में नहीं आता कभी। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि विदेश में एक कड़ा नियम है कि आपके कुत्ते ने कोई जगह को गंदा कर दिया तो आपको बहुत कड़ा दंड मिलता है, उसी क्षण आपको पुलिस $500 जो भी है आपको फाइन करेगी। तो ये लोग बड़े परेशान है तो साथ में डब्बा लेकर जाते हैं, है बड़ा आदमी, करोड़पति है, लेकिन अपने कुत्ते को ले जा रहा है साथ में डब्बा लेके जा रहा है, तो देखिए क्या हालत है। तो ऐसे सनाथ कुत्ता एक और दूसरा जो सड़क का कुत्ता। सनाथ कुत्ता बुद्धिमान है ना, थोड़ी बहुत अपनी बाहरी रूप से स्वतंत्रता को त्याग रहा है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है देखिए इसके बदले में। और जो बाहर सड़क में रहने वाला कुत्ता, उसको अहंकार है, मैं राजा हूं यहां का, दूसरे राजाओं से झगड़ता रहता है, रात में जो उसके इलाके में आता है उसके ऊपर झगड़ा करो, और उसका कितना दुखी जीवन होता है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपना सारा ऐश्वर्य, अपना सब कुछ भक्तों को प्रदान करते हैं, जैसे भगवान ने सुदामा को किया, सब कुछ दे दिया। तो जो सनाथ होते हैं, भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, उनको जीवन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई परेशानी होगी भी तो भगवान संभाल लेते हैं, भगवान का विभाग है वो। लेकिन जो अनाथ होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो हमेशा चिंता में रहते हैं, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमेशा चिंतित रहते हैं, मृत्यु के क्षण तक चिंतित रहते हैं। तो बताइए कौन सा अच्छा प्रस्ताव है, सनाथ होना या अनाथ होना? सनाथ मतलब भगवान का भक्त होना, और कुंती महारानी इसी बात को यहां पर कह रही हैं। प्रह्लाद महाराज श्रीमद् भागवत में नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके संरक्षण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूं। मैं जानता हूं कि आपके रक्षा के बिना यहां कोई सच्ची रक्षा नहीं है। और उन्होंने तीन उदाहरण दिए। एक कि एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने माता पिता के प्रेममय आश्रय में रहता है। बच्चे के पालक जो है बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करते हैं बच्चे का, लेकिन फिर भी कोई ऐसे गारंटी नहीं है कि बच्चे को कुछ होगा नहीं, कि बच्चे के लिए कुछ बिगड़ेगा नहीं। हालांकि माता पिता पूरा प्रयास अपना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ कुछ हो सकता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं प्रह्लाद महाराज कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों में जाता है, अच्छे अच्छे आधुनिक दवाइयों को उपलब्ध कराता है, प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई दवाई उसके ऊपर काम नहीं करे। हो सकता है कि उसकी बीमारी और बढ़ जाए, हो सकता है कोई भी उस व्यक्ति को बचा नहीं सके। आखिर में हर एक की ऐसी दशा होगी ना। और तीसरा उदाहरण वो देते हैं कि एक नौका है, नौका बहुत मजबूत है, आधुनिक तकनीकी ज्ञान से बना हुआ, सब तरह के सुरक्षा के यंत्र वगैरह सब हैं उस नौके में। जब लेकिन जब वही नौका बीच समुद्र में जाता है तो कोई गारंटी है कि कुछ होगा नहीं? अचानक कोई बड़ा तूफान आ गया, बड़ी बड़ी लहरें आ गईं, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रह्लाद महाराज कहते हैं कि पालक तब तक बच्चे को आश्रय दे सकते हैं जब तक भगवान की कृपा है, नहीं तो पालक कुछ नहीं कर सकते बच्चे के साथ। दवाई और डॉक्टर तब तक काम करेंगे एक मरीज के लिए जब तक कि भगवान की कृपा है, नहीं तो नहीं काम करेंगे। और नौका बीच समुद्र में जाकर वो पार कर पाएगी समुद्र को जब तक कि भगवान की कृपा है। तो कहने का मतलब ये है कि अंततः हम सब हर परिस्थिति में भगवान के आश्रय के ऊपर ही निर्भर हैं, और अन्य जितने भी आश्रय हैं जो हमें आश्रय मानते हैं उनको, वो वास्तविक आश्रय नहीं है, वो झूठे आश्रय हैं। तो हमें अच्छी तरह से भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेने में, भगवान की सेवा करने में ही अकलमंदी है, इसमें हमारा हित है, हमारी भलाई है। और सच्चा आनंद अगर प्राप्त करना है तो कुंती महारानी ने जैसे मार्ग बताया है वैसे हमें करना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, कि सारे कर्मों को मेरे चरणों में अर्पण करो और मेरी सुरक्षा के ऊपर निर्भर रहो हमेशा, और चिंता नहीं करो, मैं सब देखभाल कर लूंगा। अनन्यास चिंतयंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करता है, सदैव मेरी उपासना करते रहता है श्रद्धा भाव से, तो उसके लिए जो कमियां हैं मैं पूर्ण कर दूंगा और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। ये भगवान वचन देते हैं, भगवान अपने वचन को तोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान और उनके भक्तों के वचनों में विश्वास रखते हुए हमें पूरी तरह से श्री कृष्ण और उनके भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। और आश्रय लेने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान के आश्रय की याचना करते हैं कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हम आपके शरण में हमेशा रहना चाहते हैं, आपके चरण कमलों में हमेशा हमें आश्रय दीजिए और आपके सनातन सेवक हमें बनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न है? है प्रश्न? गले में कंठी माला होते हुए हम जो चार नियम बताए जाते हैं इसको पूरी तरह पालन नहीं होता, तो इसका परिणाम क्या है और आपका आदेश क्या है? जैसे हमने बताया ना, वो कुत्ता है, पालतू कुत्ता जिसका गले में कॉलर होता है, तो कंठी माला मतलब हम, ये भगवान श्री कृष्ण का कॉलर है, हम भगवान श्री कृष्ण के पालतू हैं, तो कंठी माला का ये महत्व है कि हम अब सनात हैं। अभी कुत्ता कोई घूम रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे इसका कोई मालिक है या नहीं? कैसे पहचानेंगे? गले में कॉलर है तो जानेंगे कि ये इसका कोई मालिक है, ये सनात है। गले में कोई कॉलर नहीं है तो जानेंगे ये अनाथ है। उसी प्रकार से कंठी माला पहनना मतलब हम सनात, हम श्री कृष्ण के आश्रय में हैं। हम घोषणा कर रहे हैं कृष्ण को भी और सारे दुनिया को भी, लेकिन घोषणा करके कुछ दूसरा ही काम करना वो ठीक नहीं। जो उचित है भक्त के लिए वैसा ही करना चाहिए। तो कंठी माला पहनने के बाद फिर नियम को भंग करना ये ठीक नहीं है। हम भगवान के गहरे आश्रय को स्वीकार हर अवस्था में हर समय कैसे कर सकते हैं? हमारे आश्रय लेने की परीक्षा सदैव होती है और कभी कभी हम उसमें असफल हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक छोटा बच्चा जब चलने को सीख रहा होता है तो क्या करता है? कभी उठता है, चलने का एक कदम लेता है, फिर बैठ जाता है, गिर जाता है, फिर से उठता है, फिर दो कदम चलता है, फिर गिरता है। ऐसे धीरे 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 से उठते चलते बैठते वो चलना सीख लेता है। लेकिन अगर बच्चा एक बार गिरने के बाद सोच ले अभी चलो अब चलने का प्रयास ही नहीं करना चाहे, बैठे ही रहेंगे, तो कभी चलना सीखेगा नहीं वो। इसलिए भले भगवान का आश्रय लेने के मार्ग में हमसे एकाध बार कभी कभी अनजाने में गलतियां हो जाएं, या कभी कभी भगवान की परीक्षा में हम असफल हो जाएं, फिर भी कोई बात नहीं। हमें हृदय से सिंसियर रहना चाहिए और इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। नियमों का पालन जहां तक हो सके कट्टरता से पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रश्न ये है कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं, तो जो गोपाल मूर्ति माधवेंद्रपुरी को मिली थी वही नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं वही हैं क्या? हाँ वही हैं। बाद में जब फिर से दोबारा मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो फिर वो मूर्ति गोवर्धन से राजस्थान में राजपूत राजाओं के आश्रय में आया वो मूर्ति, तो वही गोपाल जी की मूर्ति जिसको माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुआ था वही मूर्ति अब नाथद्वारा में है। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान भक्त के बिना, तो फिर भगवान वैरागी क्यों बनते हैं? हम सबको सिखलाने के लिए कि कैसे हमें भी दुनिया से विरक्त होना चाहिए, दुनिया की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद भी भक्तों से दूर नहीं रहे, वो तो भक्तों के बीच में ही 24 घंटे रहे, हमेशा भक्तों के संग में रहे वो। हरे कृष्ण महामंत्र क्या ये कलयुग में प्रारंभ हुआ या इसके पहले कहीं युग में हुआ था? ये सारे मंत्र जो है ना, ये शाश्वत मंत्र हैं। ऐसे नहीं कि आज ही इनका आविष्कार हुआ है, बहुत पहले से सनातन ये हैं मंत्र। लेकिन हर एक युग में एक विशेष मंत्र होता है। जैसे सत्ययुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र था, और इस कलयुग में ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये मंत्र है। यहाँ प्रश्न है कि एक आधुनिक सभ्य एक आदर्श सभ्यता की सबसे ऊंची प्राप्ति ये है कि उस सभ्यता में लोग बड़े शूरवीरता से सक्रिय होकर कार्य करें, लेकिन साथ साथ पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहें। ये कैसे कर सकते हैं? एक साथ भगवान के ऊपर निर्भर रहना, दूसरी ओर पूरी तरह से सक्रिय रहना, ये कैसे दोनों एक साथ चल सकते हैं? केवल हमें अर्जुन का उदाहरण देखना है बस। अर्जुन निष्क्रिय नहीं थे, अर्जुन कितने सक्रिय थे युद्ध में। वो तो 24 घंटे भगवान की सेवा में वो तत्पर रहते थे। तो उसी प्रकार से हम हमारे दैनिक कार्यों को, हमारे कर्तव्यों को करते रहें और फल के लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहें। इस प्रकार से हम सक्रिय होकर हम भगवान के ऊपर निर्भर भी साथ साथ रह पाएंगे। ठीक है, अब सभी सनात होने का और सनात होकर फिर सनात रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ जी। हरे कृष्ण। कोई अच्छा प्रश्न करना चाहिए जो जिसे तत्व बाहर आए। हरे कृष्णा। तो ठीक है, अभी कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम सब वृंदावन जा सकते हैं। जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है वो वृंदावन होता है। हरे कृष्णा।